नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली ऐतिहासिक वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका।
हमने ईरान के साथ बातचीत की है, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मुझे लगता है कि ईरान के लिए ये ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमरीका के लिए। हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमरीका लौट रहे हैं। हमने ये बहुत साफ कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या है, किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार हैं और किन बातों पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, और ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।
Not to accept our terms.
श्री वेंस ने कहा कि मुख्य मतभेद ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर है। उन्होंने बताया कि अमरीका ने ईरान के समक्ष अंतिम प्रस्ताव रखा है और अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। इससे पहले ईरान सरकार ने सोशल मीडिया पर संकेत दिया था कि कुछ मतभेद बने रहने के बावजूद संवाद जारी रहेगा। इस बीच एक वीडियो संदेश में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसराइल ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ली हैं और ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को विफल कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात में कल विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। इसमें क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलाव और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। सरकार ने कहा है कि उर्वरक संयंत्रों को आवंटित कुल गैस की मात्रा में 5% की वृद्धि की जा रही है। इससे ये 6 महीने की औसत खपत के लगभग 95% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि लगभग 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। एलपीजी लेकर भारतीय पोत जग विक्रम ने कल सुरक्षित रूप से होर्मुज क्षेत्र पार कर लिया। इसमें 24 नागरिक सवार हैं। लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा ये जहाज 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंच सकता है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 55.5 रुपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क 29.5 रुपए से बढ़ाकर 42 रुपए कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज सवेरे लगभग 11 बजे सिलीगुड़ी के कावाखाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी हुगली में जनसभा करेंगे। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा जांगीपुर और कुशमंडी में जनसभाएं की। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम में जनसभाएं की। उन्होंने लोगों से टीएमसी को वोट देने की अपील की। बिहार के कटिहार जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कल भारत के सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही भारत के 2 स्वर्ण और 4 रजत समेत कुल 14 पदक हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर पहली जीत दर्ज की। लीग में आज पहले मैच में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से और शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।